नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, विलियम ई ल्यूस्टेनबर्ग की फ्रैंकलिन डी द जेको रूजवेल्ट एंड द न्यू डील 1930-1940 अमेरिकी राजनीतिक और सामाजिक इतिहास की एक प्रतिष्ठित व्याख्यात्मक कृति है। यह पुस्तक महामंदी के गहरे आर्थिक संकट से लेकर युद्ध के निकट आते समय तक रूजवेल्ट प्रशासन की नीतियों, प्रयोगों और राजनीतिक संघर्षों का अध्ययन करती है। लेखक का उद्देश्य केवल योजनाओं की सूची देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि संकटग्रस्त लोकतंत्र में संघीय सरकार की भूमिका कैसे बदली। राहत, आर्थिक पुनरुद्धार, श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और वित्तीय विनियमन जैसे प्रश्न पुस्तक के केंद्र में है। ल्यूस्टेनबर्ग न्यू डील को न तो सर्वसमाधान के रूप में पेश करते हैं, न केवल सत्ता विस्तार की कहानी के रूप में। वे इसकी उपलब्धियों, विरोधाभासों और सीमाओं को उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में रखते हैं। मूलतः 1963 में प्रकाशित यह पुरस्कार विजेता इतिहास आज भी इसलिए उपयोगी है कि यह सार्वजनिक नीति, राष्ट्रपति नेतृत्व और आर्थिक परिवर्तन के परस्पर संबंधों को स्पष्ट, सुलभ और गंभीर ढंग से समझाता है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, महामंदी ने सीमित संघीय शासन की पुरानी धारणा को चुनौती दी। पुस्तक की आरंभिक शक्ति उस संकट की गंभीरता को स्थापित करने में है जिसमें रूजवेल्ट सत्ता में आए। बैंक विफल हो रहे थे, बेरोजगारी व्यापक थी, औद्योगिक उत्पादन गिर चुका था और कृषि क्षेत्र भी अस्थिरता से जूझ रहा था। ल्यूस्टेनबर्ग के लिए यह केवल आर्थिक मंदी नहीं, अमेरिकी संस्थाओं की वैधता और नागरिकों के विश्वास की परीक्षा थी। पहले की धारणा यह थी कि बाजार की समस्याओं में संघीय सरकार की भूमिका सीमित होनी चाहिए, लेकिन महामंदी ने दिखाया कि स्थानीय सहायता, निजीदान और स्वैच्छिक प्रयास इतने व्यापक संकट के सामने अपर्याप्त थे। इस पृष्ठभूमि में न्यू डील एक स्थिर सिद्धांत से निकला कार्यक्रम नहीं था, वह आपात राहत, प्रशासनिक प्रयोग और बदलती परिस्थितियों के अनुसार नीति संशोधन की प्रक्रिया थी। लेखक यह समझने में मदद करते हैं कि रूजवेल्ट की राजनीतिक सफलता केवल आकर्षक नेतृत्व में नहीं थी, बल्कि संकट को सार्वजनिक कार्रवाई की समस्या के रूप में परिभाषित करने में थी। सरकार से लोगों की अपेक्षाएं बदलने लगीं। नागरिक अब केवल व्यवस्था बनाए रखने वाली सत्ता नहीं, बल्कि रोजगार, न्यूनतम सुरक्षा और आर्थिक नियमों की जिम्मेदारी लेने वाली सरकार देखने लगे। यही बदलाव पुस्तक के पूरे विश्लेषण का आधार है। दूसरा, राहत, पुनरुद्धार और सुधार के बीच नीति निर्माण का तनाव ल्यूस्टेनबर्ग न्यू डील को एक ही योजना मानने की भूल से बचाते हैं। इसके भीतर तत्काल राहत, आर्थिक पुनरुद्धार और दीर्घकालिक सुधार के अलग उद्देश्य थे जो कई बार एक दूसरे से तनाव में भी आते थे। राहत कार्यक्रमों का लक्ष्य बेरोजगार और निर्धन लोगों को त्वरित सहायता तथा काम उपलब्ध कराना था। पुनरुद्धार की नीतियां उत्पादन, कीमतों, ऋण और मांग को संभालने का प्रयास करती थी। सुधारों का उद्देश्य उन संस्थागत कमजोरियों को बदलना था जिन्हें महामंदी ने उजागर किया था, विशेषकर बैंकिंग, प्रतिभूति बाजार और श्रम संबंधों में। पुस्तक यह दर्शाती है कि नीति निर्माण किसी सीधे क्रम में नहीं चलता। प्रशासन को कांग्रेस, न्यायपालिका, व्यवसायिक समूहों, श्रमिक संगठनों, किसानों और मतदाताओं की भिन्न मांगों के बीच निर्णय लेने पड़े। कुछ उपाय अस्थायी निकले, कुछ अदालतों में चुनौती पाए और कुछ स्थायी संस्थाओं में बदल गए। इसलिए न्यू डील की कहानी केवल कानून बनाने की कहानी नहीं है, बल्कि प्रयोग, प्रतिरोध और संशोधन की कहानी है। इस विश्लेषण का व्यावहारिक अर्थ यह है कि बड़े आर्थिक संकट में प्रभावी सरकार को गति और जवाबदेही दोनों की जरूरत होती है। केवल त्वरित खर्च पर्याप्त नहीं और केवल दीर्घकालिक सुधार तत्काल मानवीय पीड़ा का उत्तर नहीं बन सकता। तीसरा, श्रम, सामाजिक सुरक्षा और नागरिकता के नए सामाजिक दायित्व। पुस्तक का एक केंद्रीय आयाम यह है कि न्यू डील ने आर्थिक अधिकारों और नागरिकता के संबंध को कैसे बदला। 1935 के सामाजिक सुरक्षा अधिनियम ने वृद्धावस्था, बेरोजगारी और असुरक्षा के प्रश्नों को निजी दुर्भाग्य भर मानने की पुरानी प्रवृत्ति को चुनौती दी। इसी दौर में वैगनर अधिनियम ने श्रमिकों के संगठन और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार को संघीय संरक्षण दिया। बाद का फेयर लेबर स्टैंडर्ड्स अधिनियम मजदूरी और काम के घंटों के लिए राष्ट्रीय मानक स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण था। ल्यूस्टेनबर्ग इन उपायों को केवल प्रशासनिक उपलब्धियां नहीं मानते, वे इनके माध्यम से बनते उस नए सामाजिक समझौते पर ध्यान देते हैं जिसमें सरकार को आर्थिक जोखिमों के समय नागरिकों की न्यूनतम सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। फिर भी यह व्यवस्था सार्वभौमिक या निष्पक्ष नहीं थी। अनेक कार्यक्रमों की संरचना और स्थानीय क्रियान्वयन के कारण अश्वेत अमेरिकियों, कृषि मजदूरों और घरेलू कामगारों सहित कई समूहों को समान लाभ नहीं मिला। यह सीमा पुस्तक की उपलब्धियों को नकारती नहीं बल्कि बताती है कि सुधार किस प्रकार मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक ताकतों से बंधे रहते हैं। पाठक समझता है कि कल्याणकारी नीति का मूल्यांकन उसके घोषित उद्देश्य के साथ उसकी वास्तविक पहुंच से भी करना चाहिए। चौथा,
रूजवेल्ट का नेतृत्व प्रयोगशील था लेकिन संस्थागत प्रतिरोध से घिरा था। ल्यूस्टेनबर्ग रूजवेल्ट को निर्णायक नेता के रूप में देखते हैं पर उनकी व्याख्या व्यक्तित्व केंद्रित महिमा मंडन नहीं बनती। राष्ट्रपति की भूमिका जनविश्वास बनाने, प्रशासन को दिशा देने और असफलताओं के बाद राजनीतिक समर्थन बनाए रखने में महत्वपूर्ण थी। फिर भी न्यू डील का निर्माण कांग्रेस, एजेंसियों, राज्य सरकारों, अदालतों और संगठित हितों के साथ संघर्ष तथा सहयोग से हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरुआती न्यू डील कानूनों के कुछ हिस्सों को असंवैधानिक ठहराया जाना इस तनाव का प्रमुख उदाहरण है।
इसके बाद रूजवेल्ट की कोर्ट पैकिंग योजना ने दिखाया कि व्यापक जनादेश भी संस्थागत सीमाओं को आसानी से नहीं बदल सकता। इस प्रकरण से प्रशासन की राजनीतिक क्षमता पर प्रश्न उठे और रूजवेल्ट को प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पुस्तक का बड़ा सबक यह है कि लोकतांत्रिक नेतृत्व का अर्थ केवल साहसिक घोषणा नहीं बल्कि वैध संस्थाओं के भीतर टिकाऊ गठबंधन बनाना भी है।
रूजवेल्ट की सरकार ने कार्यपालिका की क्षमता को बढ़ाया लेकिन उसे हर मोर्चे पर मनचाहा परिणाम नहीं मिला। यही संतुलित दृष्टि पुस्तक को उपयोगी बनाती है।
यह नेतृत्व की शक्ति के साथ साथ संविधान, विपक्ष और सार्वजनिक सहमति की सीमाओं को भी सामने रखती है। अंत में न्यू डील का स्थायी प्रभाव और महामंदी समाप्त न कर पाने की सीमा, यह पुस्तक न्यू डील को अमेरिकी राज्य और समाज के निर्णायक रूपांतरण के रूप में रखती है
लेकिन उसके परिणामों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताती। बैंकिंग पर अधिक निगरानी, सामाजिक सुरक्षा की बुनियाद, श्रम अधिकारों की मान्यता, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास के प्रयास तथा संघीय प्रशासन की विस्तृत भूमिका इसके स्थायी प्रभावों में शामिल है।
इन बदलावों ने यह विचार मजबूत किया कि राष्ट्रीय सरकार आर्थिक गिरावट, बेरोजगारी और सामाजिक जोखिमों के प्रति निष्क्रिय नहीं रह सकती। साथ ही न्यू डील महामंदी को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकी। 1937 की आर्थिक गिरावट ने पुनरुद्धार की नाजुकता को उजागर किया
और अंततः द्वितीय विश्व युद्ध की विशाल सैन्य मांग ने रोजगार तथा उत्पादन को उस स्तर तक पहुंचाया जिसने अवसाद की जकड़न तोड़ी।
ल्यूस्टेनबर्ग की व्याख्या का महत्व इसी द्वैत में है। न्यू डील की सफलता को केवल सकल आर्थिक सूचकांकों से नहीं मापना चाहिए क्योंकि उसने संस्थाएं, अपेक्षाएं और राजनीतिक गठबंधन बदले, लेकिन इसे पूर्ण आर्थिक विजय कहना भी गलत होगा। आधुनिक पाठक के लिए यह अंतर विशेष रूप से उपयोगी है। संकट नीति का आकलन तत्काल आर्थिक परिणाम, दीर्घकालिक संस्थागत सुधार और लाभों के असमान वितरण, तीनों कसौटियों पर होना चाहिए। निष्कर्ष में, यह पुस्तक अमेरिकी इतिहास, सार्वजनिक नीति, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र के इतिहास और राष्ट्रपति पद के अध्ययन में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। विद्यार्थियों को इसमें महामंदी और न्यू डील का एक व्यवस्थित ढांचा मिलता है जबकि सामान्य पाठक समझ सकते हैं कि आर्थिक संकट राजनीतिक संस्थाओं और नागरिक अपेक्षाओं को कैसे बदलता है।
नीति निर्माताओं तथा सार्वजनिक बहस में रुचि रखने वालों के लिए इसका बौद्धिक लाभ यह है कि यह सरकारी हस्तक्षेप को नारे के रूप में नहीं बल्कि विकल्पों, समझौतों और सीमाओं वाली व्यावहारिक प्रक्रिया के रूप में देखती है। ल्यूस्टेनबर्ग यह स्पष्ट करते हैं कि राहत देना, अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना और स्थायी सुधार करना अलग कार्य हैं, जिनके लिए अलग राजनीतिक रणनीतियां चाहिए। समान विषय की अनेक पुस्तकों की तुलना में इसकी विशिष्टता, व्यापकता और पठनीयता के संतुलन में है। यह केवल रूजवेल्ट की जीवनी नहीं, केवल कानूनों का विवरण नहीं और केवल आर्थिक सिद्धांत का अध्ययन भी नहीं है।
इसके बजाय यह प्रशासन, कांग्रेस, न्यायपालिका, श्रम और जनमत के परस्पर प्रभावों को एक ही ऐतिहासिक चित्र में रखती है। 1963 में लिखे जाने के कारण बाद के दशकों की कुछ बहसें इसमें स्वाभाविक रूप से नहीं मिलती। फिर भी इसकी मूल व्याख्या, स्पष्ट गद्य और संस्थागत दृष्टि इसे न्यू डील पर आरंभ करने के लिए असाधारण रूप से मजबूत पुस्तक बनाती है।
यह पाठक को सरल निष्कर्षों के बजाय लोकतांत्रिक सुधार की जटिल वास्तविकता समझने के लिए तैयार करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं विलियम ई लिट्ज़वर्क, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।